लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत अपने मंगलवारीय कार्यक्रम में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लाउदातो सी मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो की चर्चा सुन रहे हैं। हमने लाउदातो सी के तीसरे अध्याय पर्यावरणीय संकट में मानवीय जड़ों की शुरुआत की है। हमने अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि टेक्नो विज्ञान, जिसका हम सही उपयोग करते तो यह हमारे जीवन को उन्नत बनाने हेतु महत्वपूर्ण साधनों का उत्पादन करता है, जहां हम घरेलू उपयोगी वस्तुओं से लेकर यातायात के वृहद प्रणालियों, सेतुओं, बिल्डिंगों और सामाजिक स्थलों को पाते हैं। यह हमारे लिए कला को भी उत्पन्न करता है और नर तथा नारियों को भौतिकता की दुनिया में डुबोते हुए सुंदरता की दुनिया के पार जाने में मदद करता है। विमान या गगनचुंबी इमारत की सुंदरता को कौन इनकार कर सकता है। कला के मूल्यवान कार्य और संगीत अब नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं अतः नई तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा इच्छित सौंदर्य और ऐसी सुंदरता में चिंतन एक बड़ा परिवर्तन उत्पन्न करता है जो विशिष्ट रूप से मानवीय होती है। श्रोताओं, यद्यपि हमें यह भी चिन्हित करने की जरूरत है कि न्यूक्लियर शक्ति, बायोटेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी, मानवीय डीएनए का ज्ञान और अन्य दूसरी योग्यताएं जिन्हें हमने पाया है, हमें एक अभूतपूर्व शक्ति प्रदान करती हैं। अधिक स्पष्ट रूप से उनके द्वारा मानवता और पूरी दुनिया एक प्रभावशाली प्रभुत्व हासिल करती है, जिनके पास ज्ञान और विशेष रूप से उनका उपयोग करने के लिए आर्थिक संसाधन हैं। मानवता में ऐसी शक्ति पहले कभी नहीं थी, यद्यपि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करे कि उनका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाएगा, विशेषकर जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि वर्तमान समय में वे किस तरह से उपयोग किए जा रहे हैं। हमें उनकी जरूरत है, लेकिन हम न्यूक्लियर बमों के बारे में सोचें जिन्हें 20वीं सदी के मध्य में गिराया गया, या प्रौद्योगिकी की वह श्रृंखला जिसका उपयोग नाजीवाद, साम्यवाद और अन्य अधिनायकीवाद शासनों ने लाखों लोगों के विनाश हेतु किया। हम उन बातों के बारे में जिक्र नहीं कर सकते जहां हम विध्वंसक हथियारों को आधुनिक समय के युद्ध हेतु तैयार होता पाते हैं। ये सारी शक्तियां किनके हाथों में है, या क्या यह कभी खत्म होगा? मानव के एक छोटे हिस्से के पास यह होना हमें अत्यधिक खतरे में डाल देता है। श्रोताओ, हम में एक ऐसी प्रवृत्ति है जहां हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि शक्ति में वृद्धि का अर्थ अपने में एक प्रगति है, सुरक्षा, उपयोगिता, कल्याण और उत्साह में एक उन्नति, संस्कृति की धारा में नए मूल्यों का समावेश, मानो सच्चाई, अच्छाई और सत्य स्वतः ही तकनीकी और आर्थिक शक्ति से प्रवाहित होती हों। हमारे लिए सच्चाई यही है, समकालीन मानव अपने में शिक्षित नहीं किया गया है कि कैसे उसे शक्ति का सही उपयोग करना है, क्योंकि हमारी वृहद तकनीकी विकास के साथ मानवीय जिम्मेदारी मूल्यों और मनोचेतना का विकास नहीं हुआ है। प्रत्येक युग में अपनी खामियों के प्रति अल्प जागरूकता है। यह संभव है कि हम अपने सामने खड़ी चुनौतियों की गंभीरता का एहसास नहीं करते हैं। हमारे लिए यह जोखिम दिन ब दिन बढ़ते जा रही है कि मनुष्य अपनी शक्ति का उपयोग वैसा नहीं करेगा जैसा उसे करना चाहिए। वास्तव में शक्ति कभी भी चुनाव के उत्तरदायित्व स्वरूप नहीं देखी गई है, जिसमें हमारे लिए स्वतंत्रता निहित है, क्योंकि इसमें मापदंड केवल कथित आवश्यकता से, उपयोगिता या सुरक्षा से लिए गए हैं। लेकिन मानव पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं है। हमारी स्वतंत्रता अपने में धूमिल हो जाती है जब हम इसे अचेतना, तात्कालिक आवश्यकताओं, स्वार्थ और हिंसा की अंधी शक्तियों को सौंपते हैं। इस अर्थ में शक्ति के विकास की स्थिति में हम अपने को नंगा और खुला पाते हैं। हम नियंत्रित करने में कमी को पाते हैं। हमारे पास कुछ छिछले मापदंड हैं, लेकिन हम अपने में ठोस नैतिकता का दावा नहीं कर सकते हैं। एक संस्कृति और सच्ची आध्यात्मिकता जो सीमाएं निर्धारित करने और आत्म संयम सिखाने में सक्षम हो। मूलभूत समस्या और भी गहराई में जाती है। यह उस रूप में है जहां मानव ने प्रौद्योगिकी और उसके विकास को एक अविभाज्य और एक आयामी प्रतिमान के अनुसार अपना लिया है। यह प्रतिमान एक विषय की अवधारणा को ऊंचा उठाता है जो तार्किक और तर्कसंगत प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके विकास का मार्ग अपनाते हुए किसी बाहरी वस्तु पर नियंत्रण हासिल करता है। यह विषय हर संभव वैज्ञानिक और प्रायोगिक तरीकों को लागू करने की कोशिश करता है जो स्वयं में पहले से ही एक तकनीकी युक्त स्वामित्व और परिवर्तन को धारण करता है। यह ऐसा है जैसे कि विषय स्वयं को किसी निकार की उपस्थिति में पाता है जो हेर फेर के लिए पूरी तरह से खुला है। नर और नारियों ने निरंतर प्रकृति से छेड़छाड़ किया है, लेकिन एक लंबे समय से इसका अर्थ प्रकृति के संग संयुक्त रहना और उन सारी संभावनाओं का सम्मान करना है जो हमें चीजों के रूप में प्राप्त होता है। यह प्रकृति से मिलने वाली चीजों के प्रति अपने को खुला रखना है। मानो वे हमें अपने हाथों से हमारे लिए चीजों को प्रदान कर रहे हों। अब हम ठीक अपने को इसके विपरीत पाते हैं। हम अपने हाथों से अपने लिए चीजों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे सामने जो सच्चाई है हम उसे नजरअंदाज करने या हकीकत को भूलने की कोशिश करते हैं। मानव और भौतिक वस्तुएं अब एक दूसरे के लिए मित्रवत हाथों को नहीं फैलाते हैं। उनके बीच का संबंध अब युद्धस्प्रद हो गया है। यह हमें अनंत या असीमित विकास के विचार को स्वीकार करने हेतु सहज बनाता है, जो अर्थशास्त्रियों, वित्तीय देयक और तकनीकी के लिए अति आकर्षक लगते हैं। यह इस झूठ में आधारित है कि पृथ्वी के पास हमें देने हेतु अनंत चीजें हैं और हम इस बात हेतु अग्रसर होते हैं कि पारिस्थितिकी से हम अपने लिए हर चीजों को असीमित रूप में खींच निकालें। यह एक गलत विचार है कि धरती में हमारे लिए एक अनंत मात्रा में शक्ति और साधन उपलब्ध हैं, कि उन्हें शीघ्रता से नवीनीकृत करना संभव है और प्राकृतिक व्यवस्था के दोहन के नकारात्मक प्रभावों को आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। श्रोताओं, हम यह कह सकते हैं कि आज की दुनिया की अधिकतर समस्याओं का उत्पन्न होना चाह के कारण होता है, बहुधा अवचेतना में, जहां हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पद्धति और उद्देश्यों को एक ज्ञान मीमांसीय प्रतिमान बनाते जो व्यक्तियों के जीवन और समाज के कामकाज को आकार देता है। इस मॉडल को संपूर्ण मानवीय और सामाजिक वास्तविकता पर थोपने का प्रभाव पर्यावरण की गिरावट में देखा जाता है, लेकिन यह न्यूनतमवाद का सिर्फ एक संकेत है जो मानव और सामाजिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हमें इस बात को स्वीकारने की जरूरत है कि तकनीकी उत्पादन अपने में निष्क्रिय नहीं है। वे एक संरचना का निर्माण करते हैं जो हमारी जीवन शैली और सामाजिक संभावनाओं को शक्तिशाली दलों के विचारों और चाहतों के अनुरूप अनुकूलित बना देते हैं। जो निर्णय विशुद्ध रूप से सहायक प्रतीत होते हैं वे वास्तव में उस प्रकार के निर्णय हैं जिस प्रकार का समाज हम बनाना चाहते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। अप्रैल माह की प्रार्थना की प्रेरिताई में पोप फ्रांसिस ने महिलाओं के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है। पोप ने अपने विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क के माध्यम से कहा, आइए हम महिलाओं का सम्मान करें, हम उनकी गरिमा, उनके बुनियादी अधिकारों का सम्मान करें, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा समाज प्रगति नहीं कर पाएगा। अपने प्रार्थना मनोरथ में पोप ने आग्रह किया है कि सरकारें हर जगह भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म करने और महिलाओं के मानवाधिकारों की गारंटी की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हों। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर अपनी मासिक प्रार्थना का उद्देश्य महिलाओं को समर्पित किया है। अप्रैल के लिए पोप के वीडियो में उन्होंने उन प्रयासों पर जोर दिया है जिन्हें आज के समाज को उठाने की जरूरत है, और ख्रिस्तों को अपने साथ प्रार्थना में शामिल होने के लिए आग्रह किया है ताकि महिलाओं की गरिमा और मूल्य को मान्यता दी जा सके। यह वीडियो आंखों में आंसू लिए एक एशियाई महिला, चेहरे पर उदासी लिए बाढ़ के पीछे एक और महिला, बलात्कार के पीड़ितों के एक समूह को उनके गांव से बाहर निकाले जाने के दृश्यों को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार संत पापा का संदेश घोषित सिद्धांतों और वास्तविक व्यवहार के बीच मौजूद भारी अंतर को उजागर करता है। पोप के विश्वव्यापी प्रार्थना नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक जेसुइट फादर फ्रेडरिक फोर्नोस याद करते हैं कि शुरू से ही येसु ने महिलाओं को अपने शिष्यों के रूप में स्वागत किया। यह उस समय के समाज में एक नवीनता थी, जैसा कि सुसमाचार दिखलाता है। येसु की मां मरियम ने प्रेरितों और आरंभिक समुदाय में एक प्रमुख स्थान रखा, और येसु ने अपने शिष्यों के लिए अपने पुनरुत्थान की घोषणा करने का मिशन एक महिला मरियम मगदलीना को सौंपा। वैटिकन न्यूज ने कन्नड़ भाषा को 53वीं भाषा के रूप में अपने साथ जोड़ लिया, जिसमें पोप, वैटिकन एवं कलीसिया समाचारों का कवरेज प्रदान किया जाता है, और 35 मिलियन भारतीयों की मातृभाषा में सुसमाचार की उद्घोषणा की जाती है। कन्नड़ वैटिकन न्यूज की 53वीं भाषा बन गई है। मंगलवार से भारत में लाखों लोगों द्वारा बोली जाने वाली इस भाषा में समाचार वैटिकन न्यूज वेब पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। यह पहल भारत के कर्नाटक राज्य में संचार विभाग और बैंगलोर महाधम प्रांत के बीच सहयोग से उत्पन्न हुई है। बैंगलोर के महाधम अध्यक्ष पीटर मचारो ने कहा, मैं कन्नड़ में इन पेजों की शुरुआत से खुश हूँ। संत पापा वैटिकन सावा में कलीसिया और दुनिया के बारे में समाचार कर्नाटक में स्थानीय कलीसिया के लिए बहुत रुचिकर और महत्वपूर्ण होंगे। मैं हमारे प्यारे संत पापा फ्रांसिस को सिनोडालिटी पर लगातार जोर देने और कलीसिया को परिधि पर लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। विश्वासों को निश्चित रूप से इन लेखों को पढ़ने से और बाद के चरणों में जब संभव हो ऑडियो और वीडियो में उनके प्रसारण से भी लाभ होगा। मुझे यकीन है कि बैंगलोर महाधर्म प्रांत का हमारा संचार केंद्र विश्वव्यापी कलीसिया को लोगों के करीब लाएगा। वैटिकन के संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पॉलो रूफिनी ने कहा, वैटिकन न्यूज द्वारा बोली जाने वाली भाषा में एक नई भाषा जोड़ी गई है। यह एक प्राचीन भाषा है, फिर भी बहुत जीवंत है। यह कैथोलिक समुदाय की तरह ही जीवित है जो इस छोटे लेकिन महान उद्यम में 35 मिलियन भारतीयों की भाषा बोलने के लिए हमारी मदद करती है। यह उनकी संस्कृति के प्रति श्रद्धांजलि है और प्रामाणिक संचार की सेवा है। यह कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलने का रास्ता है। यह निश्चित रूप से महान प्रयास को दर्शाता है, लेकिन जैसा कि एक कन्नड़ कहावत है, प्रयास हमेशा फल देता है। वैटिकन मीडिया के संपादक के निदेशक अंद्रिया तुर्नेल्ली ने कहा, लाखों भारतीयों की मातृभाषा में पोप के संदेश को ले जाने के लिए वैटिकन रेडियो वैटिकन न्यूज के मौजूदा 52 भाषाओं में कन्नड़ भाषा को भी जोड़ने का निर्णय रोम के धर्माध्यक्ष और सभा में कलीसिया बनाने वाली कलीसियाओं की हमारी सेवा की बुलाहट की पुष्टि करता है। कठिनाइयों, अनिश्चितताओं, युद्धों और हिंसा से भरे एक ऐतिहासिक क्षण में यह सांत्वना देने वाली बात है कि कलीसिया रोम और दुनिया के बीच संबंधों को मजबूत करते हुए एकता और साझाकरण की गवाह बन रही है। वैटिकन रेडियो वैटिकन न्यूज के प्रमुख मसिमिलियानो मनिकेत्ती ने जोर देकर कहा, कलीसिया की व्यापकता सचमुच अद्भुत है। 93 साल पहले पोप पियूस 11वें ने दुनिया में आशा लाने, ख्रिस्ती घोषणा का प्रचार करने और ख्रिस्त की कलीसिया का निर्माण करने के लिए गुलेल्मो मार्कोनी को वैटिकन रेडियो के निर्माण का काम सौंपा था। 1990 के दशक में पोप के रेडियो की लहरें वियतनाम तक पहुंच गईं। उस घोषणा ने एक नया जीवित कलीसिया रेडियो ख्रिस्त उत्पन्न किया। आज नई प्रौद्योगिकियां हमें हमारी घायल दुनिया में सुसमाचार लाने के कई अवसर प्रदान करती हैं। कन्नड़ भाषा जीवन शक्ति और भाईचारे का एक और उदाहरण है और हमारी इच्छा इन रास्तों को जिम्मेदारी और एकता में बुनना जारी रखना है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए वैटिकन के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष गैब्रियल कच्चा ने मानवता के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए मानव गरिमा और अधिक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय उपायों का आह्वान करते हुए रोकथाम के प्रयासों के महत्व पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की 6वीं समिति को संबोधित करते हुए प्रेरितिक राजदूत एवं संयुक्त राष्ट्र में परमधम पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष गैब्रियल कच्चा ने मानवता के विरुद्ध अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता दोहराई। स्थानीय पर्यवेक्षक ने प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मानवता के विरुद्ध अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के रूप में लंबे समय से मान्यता दिए जाने पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग ने सही कहा है कि इन अपराधों पर प्रतिबंध वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक अनिवार्य मानदंड है। अपने संबोधन में महाधर्माध्यक्ष ने पोप फ्रांसिस के शब्दों को याद करते हुए कहा, सभी परिस्थितियों में दूसरों की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। अपने बयान को समाप्त करते हुए स्थायी पर्यवेक्षक ने इस बात पर जोर दिया कि संप्रभु हित कभी भी मानवता के खिलाफ अपराधों को उचित नहीं ठहरा सकता। रांची के महाधर्माध्यक्ष माननीय विंसेंट आइंद ने 1 अप्रैल को पिस्का नगरी में नवनिर्मित फादर कॉन्स्टेंट लेवंस हॉस्पिटल का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ पौत्र मिस्सा बलिदान से हुआ, जिसकी अगुवाई महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद ने की। हॉस्पिटल का निर्माण पिस्का नगरी के एक स्थानीय चिकित्सक दंपति डॉक्टर सुरेश मिंज और डॉक्टर अग्नेस मिंज ने मिलकर किया है। महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद ने दोनों का मनोबल बढ़ाते हुए उन दोनों डॉक्टर दंपति का धन्यवाद किया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।